एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमारे ग्रह के साथ हमारे रिश्ते को समझने का नजरिया बदल सकती है।
हाँ, किताब का नाम है हार्वेस्टिंग द बायोस्फीयर और लेखक है वैक्लव स्मिल।
बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है ना?
हाँ, मतलब ये पूछती है कि हम इंसानों ने पृथ्वी के जीवित संसाधनों का, जिसे बायोमास कहते हैं, कितना हिस्सा इस्तेमाल किया है और आज कितना कर रहे हैं।
और आज के समय में ये सवाल बहुत जरूरी हो गया है। पर्यावरण, स्थिरता, ये सब बातें जो हम करते हैं।
सही कहा, क्योंकि ये किताब सिर्फ पर्यावरण विज्ञान की नहीं है, ये दिखाती है कि हमारी पूरी सभ्यता, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ पृथ्वी की जैविक क्षमता पर कैसे टिकी है।
स्मिल आंकड़ों के जरिए एक बहुत बड़ी और कभी कभी थोड़ी चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं।
बिल्कुल, तो चलिए इस किताब की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं स्मिल क्या कह रहे हैं।
ठीक है, तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। ये वैक्लव स्मिल कौन है?
देखिए, वैक्लव स्मिल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा कनाडा में प्रोफेसर एमेरिटस है, रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा के फेलो भी हैं, पर ये सिर्फ उनका अकादमिक परिचय है।
मतलब उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा है।
हाँ, स्मिल की खास बात यह है कि वो किसी एक डिब्बे में फिट नहीं होते, वो कई विषयों के जानकार हैं।
जैसे कि
ऊर्जा, पर्यावरण, खाना, आबादी, अर्थव्यवस्था, इतिहास, तकनीक, इन सब पर उनकी गजब की पकड़ है और वो लिखते बहुत है, 40 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं।
हाँ, और उनकी खासियत क्या है, मतलब उनके सोचने का तरीका?
उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका डेटा पर आधारित मात्रात्मक नजरिया। वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते या तकनीकी उम्मीदों पर नहीं टिकते, वो पूछते हैं कितना।
अच्छा, मतलब वो हर चीज को नापते तोलते हैं।
बिल्कुल, जूल्स में, किलोग्राम में, पेटाग्राम में, वो हजारों रिसर्च पेपर, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सरकारी रिपोर्ट खंगाल कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं।
इसीलिए शायद हार्वेस्टिंग द बायोस्फीयर जैसी किताब वही लिख सकते थे जिसमें जीव विज्ञान, इतिहास, इंजीनियरिंग सब कुछ लगता है।
हाँ, ये पता लगाना कि हमने पृथ्वी के जीवित पदार्थों का कितना वजन इस्तेमाल किया है, ये उनके जैसे विचारक के लिए ही संभव था।
समझ गया, तो आप किताब पर आते हैं। असल में ये किताब है क्या, इसका मूल विचार क्या है?
ये किताब, आप कह सकते हैं, पृथ्वी पर इंसानी असर का एक मात्रात्मक इतिहास है।
वजन के हिसाब से?
वजन के हिसाब से
मतलब?
मतलब ये राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं, बल्कि जूल्स, किलोग्राम और पेटाग्राम की कहानी है। ये पूछती है, हमने पृथ्वी के जीवित पदार्थों यानी बायोमास को कितना हार्वेस्ट किया है, कितना काटा है।
और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ ये आंकड़े देना?
नहीं, सिर्फ आंकड़े देना नहीं, उद्देश्य है ये मापना कि मानव जाति ने पृथ्वी के इकोसिस्टम से कितना बायोमास निकाला है और खास तौर पर पिछली 2 सदियों में ये कैसे एकदम से बढ़ गया है।
औद्योगिक क्रांति की बात?
हाँ बिल्कुल, किताब हमें समय यात्रा पर ले जाती है। शुरू होती है उस वक्त से जब धरती पर इंसानों का असर ना के बराबर था।
अच्छा।
स्मिल यहाँ एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन,
NPP।
ये क्या है? सरल शब्दों में ये पृथ्वी का सालाना जैविक बजट है, मतलब हर साल प्रकाश संश्लेषण से कितना नया बायोमास बनता है, सूरज की रोशनी से।
ठीक है, तो ये हमारा शुरुआती बजट हुआ।
हाँ, फिर हम देखते हैं कि कैसे शिकारी संग्राहक समाज इसका बहुत छोटा से हिस्सा इस्तेमाल करते थे, वो तो प्रकृति के जाल का हिस्सा थे। फिर आई कृषि क्रांति, हमने जमीन साफ की, फसलें उगाई, जानवर पाले, ये पहला बड़ा कदम था बायोमास के प्रवाह को अपनी तरफ मोड़ने का।
और फिर औद्योगिक युग का धमाका। बिल्कुल,
जीवाश्मी ईंधन, कोयला, तेल, गैस, इसने हमें बहुत ज्यादा ताकत दे दी, फसल काटने की, उसे प्रोसेस करने की, दुनिया भर में भेजने की।
मशीनों ने सब बदल दिया।
हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, हबर बॉश प्रक्रिया से बनने वाला सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक, इसने तो जैसे खेती की जैविक सीमाओं को ही तोड़ दिया।
यहीं पर वो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, HANPP।
हाँ, ह्यूमन अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ये सिर्फ ये नहीं मापता कि हम कितना बायोमास सीधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना या लकड़ी।
तो फिर ये क्या मापता है?
ये वो भी मापता है कि हमारी वजह से कितना संभावित बायोमास पैदा ही नहीं हो पाया, जैसे शहरों, सड़कों के नीचे दबी जमीन पर, या जो नष्ट हो गया जैसे जंगल की आग से, ये हमारे कुल जैविक असर का ज्यादा पूरा हिसाब है।
ठीक है, तो किताब इन हिस्सों में बंटी है। पहला भाग क्या है?
आधार रेखा तय करना। हाँ, भाग एक, आधार रेखा तय करना। यहाँ स्मिल पहले ये अंदाजा लगाते हैं कि इंसानों के ज्यादा दखल से पहले पृथ्वी पर कुल बायोमास कितना था और सालाना एनपीपी कितना था।
और वो आंकड़ा क्या है?
एक खास बात, जमीन पर उगने वाले पौधे हर साल करीब 105 अरब टन कार्बन स्थिर करते हैं। यही वो केक है जिसमें से हम अपना हिस्सा लेते हैं।
105 अरब टन, ठीक है। समुद्रों का क्या?
समुद्र विशाल है, पर ज्यादातर आसानी से मिलने वाला एनपीपी जमीन पर ही होता है।
ओके, तो ये बेसलाइन हो गई। फिर आता है भाग दो, शुरुआती फसलें।
हाँ, भाग दो, शुरुआती फसलें। इसमें शिकारी संग्राहकों की बात है। उनका वैश्विक एनपीपी पर असर बहुत कम था। आबादी कम, जरूरतें सीमित, वो इकोसिस्टम के भीतर रहते थे। फिर कृषि क्रांति, ये पहला बड़ा बदलाव था। जमीन बदलना, मतलब जंगल साफ करके खेत बनाना, ये एनपीपी को इंसानी जरूरत की तरफ मोड़ने का पहला बड़े पैमाने का प्रयास था।
इससे आबादी बढ़े लेकिन शायद प्रकृति का संतुलन बिगड़ा।
हाँ, आबादी बढ़ी लेकिन इकोसिस्टम सरल हो गए, जैव विविधता कम होने लगी।
और फिर आता है भाग तीन, तीव्र गति यानी औद्योगिक फसल। यहाँ क्या होता है?
भाग तीन, तीव्र गति औद्योगिक फसल। यहाँ आंकड़े आसमान छूते हैं। जीवाश्म ईंधन से चलने वाली मशीनें, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर।
और वो उर्वरक वाली बात, हैबर बॉश।
हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, हैबर बॉश प्रक्रिया से बनने वाला सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक। इसने खाद्य उत्पादन की जैविक सीमाओं को तोड़ दिया।
कैसे? मतलब नाइट्रोजन इतनी जरूरी क्यों है पौधों के लिए?
नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। पहले ये प्रकृति में धीरे धीरे मिट्टी में आता था। हैबर बॉश ने इसे हवा से निकालकर फैक्ट्री में बनाना संभव कर दिया।
अच्छा, तो इससे पैदावार बहुत बढ़ गई होगी।
हाँ, गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलों की पैदावार में खगोलीय वृद्धि हुई। स्मिल कहते हैं कि आज दुनिया की आधी आबादी का पेट इसी प्रक्रिया की देन है। वो फसल के अवशेषों, पुआल, डंठल का भी हिसाब रखते हैं, जो कुल बायोमास फसल का एक बड़ा हिस्सा है।
खेती के अलावा और क्या है इस भाग में? जंगल और पशु?
हाँ, वन और पशु। वैश्विक वानिकी का पैमाना ईंधन और लकड़ी के लिए, वनों की कटाई और उनकी जगह कम विविध पेड़ लगाना।
और जानवरों का?
साथ ही वैश्विक पशुधन आबादी की चौंका देने वाली वृद्धि। मवेशी, सुअर, मुर्गियाँ, इनका कुल वजन अब जंगली जानवरों से कहीं ज्यादा है।
और ये जानवर भी तो पौधे ही खाते हैं।
बिल्कुल, और ये पौधे बायोमास को मांस और डेयरी में बदलने में बहुत कुशल नहीं है। मतलब एक किलो मांस बनाने में कई किलो चारा लगता है।
तो इससे हमारा बायोमास पचिन और बढ़ जाता है।
हाँ,
पानी की फसलें, मछलियाँ,
उसका भी हिसाब है। छोटी नावों से लेकर आज के बड़े बड़े औद्योगिक ट्रॉलरों तक मछली पकड़ने का इतिहास। वैश्विक मछली पकड़ने के आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हुई और फिर
ठहराव या गिरावट।
हाँ, कई जरूरी प्रजातियों के लिए गिरावट। ये साफ संकेत है कि हम जैविक सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। स्मृल फिशिंग डाउन द फूड वेब की बात भी करते हैं।
मतलब
जब बड़ी कीमती मछलियां कम हो जाती हैं, तो हम छोटी कम कीमती मछलियों को पकड़ने लगते हैं। ये अस्थिर कटाई का एक उदाहरण है।
तो इन सब अलग अलग स्रोतों का हिसाब लगाकर चौथे भाग में स्मिल क्या नतीजे निकालते हैं? वो HNMPP का आंकड़ा क्या है?
भाग चार, अंतिम गणना और भविष्य। स्मिल सभी आंकड़ों को एक साथ लाते हैं और HNMP की गणना करते हैं। निष्कर्ष चौंकाने वाला है।
कितना?
मानव जाति अब सभी संभावित स्थलीय NNP का 25% से 40% के बीच सीधे उपयोग करती है, रोकती है या नष्ट कर देती है।
25 से 40%?
ये तो बहुत ज्यादा है।
हाँ,
सोचिए, धरती पर उगने वाले कुल संभावित पौधों के जीवन का 1/4 से लेकर लगभग आधे तक पर हमारा कब्जा है या असर है।
इसके परिणाम क्या हैं और भविष्य के लिए स्मिल क्या कहते हैं?
परिणाम, बड़े पैमाने पर जैव विविधता का नुकसान, वैश्विक जैव भूरसायनिक चक्रों, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस में गड़बड़ी, मिट्टी का क्षरण, बायोस्फीयर के लचीलेपन में कमी।
ये सब तो हम सुन ही रहे हैं आजकल।
हाँ, स्मिल कोई आसान समाधान नहीं देते, बल्कि एक गंभीर नजरिया पेश करते हैं। वो जोर देते हैं कि भविष्य में विकास पर कठोर भौतिक सीमाएं हैं। तो इस पूरी किताब से मुख्य विषय या संदेश क्या निकलते हैं? पहला तो शायद आंकड़ों का महत्व।
हाँ बिल्कुल, पहला, मात्राकरण ही सच्ची समझ का मार्ग है।
हम केवल बातों से पर्यावरण की स्थिति नहीं समझ सकते, आंकड़े गहरी सच्चाई उजागर करते हैं।
सही है। दूसरा,
हमारे समय की खासियत।
दूसरा, आधुनिक युग की अभूतपूर्व प्रकृति। पिछले 200 साल इतिहास की निरंतरता नहीं है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बायोमास कटाई में जो उछाल आया है वो एक मूलभूत बदलाव है। हमारा प्रभाव वैश्विक और भारी हो गया है।
तीसरा, ये कि हम अब प्रबंधक बन गए हैं।
हाँ, तीसरा, मानवता बायोस्फीयर की प्रबंधक बन गई है। हम अब केवल इकोसिस्टम में रहने वाली प्रजाति नहीं है, हम सक्रिय रूप से उन्हें बदल रहे हैं, कुछ चुनिंदा प्रजातियों, गेहूं, चावल, मवेशी के पक्ष में।
और चौथा, वो बायोमास अंधापन।
हाँ, चौथा, बायोमास अंधापन। शहरी जीवन हमें प्रकृति से आज़ादी का भ्रम देता है। हम सुपरमार्केट से खाना खरीदते हैं ये देखे बिना कि इसके पीछे कितना बड़ा जैविक और ऊर्जा तंत्र काम कर रहा है।
स्मिल इस अदृश्य नींव को दिखाते हैं।
और पांचवा, वो सीमाएं।
पांचवा, जैव भौतिक सीमाएं अटल हैं। तकनीक दक्षता बढ़ा सकती है लेकिन वो NPP की मूल सीमा को नहीं मिटा सकती, यानी हर साल सूर्य की कितनी ऊर्जा जीवित पदार्थ में बदलती है। ये उस आशावाद को चुनौती देता है कि केवल नयापन हमारी पर्यावरणीय समस्याओं को हल कर सकता है।
किताब में कुछ यादगार पंक्तियां या विचार भी होंगे जो दिमाग में रह जाएं।
हाँ, सीधे उदाहरण तो नहीं, पर स्मिल के तर्कों का सार कुछ इस तरह है। पहला विचार, मानव सभ्यता के इतिहास को पृथ्वी के नेट प्राइमरी प्रोडक्शन पर हमारे बढ़ते कब्जे की कहानी के रूप में फिर से लिखा जा सकता है।
मतलब हमारी कहानी मूल रूप से संसाधनों के उपभोग की कहानी है। हाँ, दूसरा विचार, आधुनिक कृषि को खेती के रूप में नहीं बल्कि जीवाश्म ईंधन को खाद्य बायोमास में बदलने की औद्योगिक प्रक्रिया के रूप में सबसे अच्छा समझा जाता है।
ये हमारे खाने और तेल के गहरे रिश्ते को उजागर करता है। हैबर बॉश के बिना दुनिया की आबादी आधी होती।
बिल्कुल। तीसरा विचार, मनुष्य और उनके पालतू जानवर अब स्थलीय कशेरुकी वर्टिब्रेट प्राणियों के कुल जुमास प्राणी भार का 95% से अधिक है।
95%, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। जंगली जानवर सिर्फ 5%।
हाँ, ये दिखाता है कि हमने जंगली जानवरों को कैसे हटा दिया है और पृथ्वी पर जीवन को कैसे बदल दिया है।
चौथा विचार, स्थिरता को लेकर उनके यथार्थवादी रवैये को दिखाता है।
हाँ, स्थिरता चुनौतियों से निपटने के लिए उपभोग में कमी की तुलना में दक्षता में सुधार अधिक तत्काल और व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं। वो तकनीकी और प्रबंधन समाधानों पर जोर देते हैं।
और पांचवा, फिर से वही बात ना, नापना जरूरी है।
जैविक विनियोग का मात्रात्मक विश्लेषण कोई अकादमिक अभ्यास नहीं बल्कि तर्कसंगत पर्यावरण नीति के लिए एक आवश्यक आधार है। मतलब सही नीति के लिए सही डेटा चाहिए।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है?
बहुत कुछ। व्यक्तिगत स्तर पर यह आहार विकल्पों के बायोमास पदचिन्ह को समझने का आधार देता है। क्यों मांस आधारित आहार, खासकर बीफ के लिए, पौधे आधारित आहार की तुलना में कहीं ज्यादा जमीन, ऊर्जा और पौधे लगते हैं, ये मात्रात्मक रूप से स्पष्ट हो जाता है।
तो हम अपने खाने के बारे में सोच सकते हैं और लकड़ी, कागज, कपास का इस्तेमाल।
हाँ, उन पर भी एक नया नजरिया मिलता है।
और खाने की बर्बादी, उसका क्या?
खाद्य बर्बादी, स्मिल का विश्लेषण बताता है कि खाद्य प्रणाली में लगभग 1/3 उत्पादन बर्बाद हो जाता है।
1/3?
हाँ, तो भोजन की बर्बादी कम करना शायद डाइट बदलने से भी ज्यादा पर्यावरणीय प्रभाव डाल सकता है। ये हम सब कर सकते हैं।
और नीति के स्तर पर सरकारें क्या कर सकती हैं?
नीति और शासन स्तर पर हेनापी जैसे संकेतक राष्ट्रीय स्तर पर ये मापने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि क्या कोई देश अपनी पारिस्थितिक क्षमता के भीतर काम कर रहा है। ये वनों, मत्स्य पालन और कृषि भूमि के प्रबंधन के लिए एक ढांचा देता है।
और ऊर्जा और खाद्य नीतियों को जोड़ने की जरूरत भी दिखती है।
बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा असर है एक व्यापक विश्व दृष्टि पर। ये किताब एक सीमित ग्रह पर अनंत आर्थिक विकास की धारणा को चुनौती देती है।
यह हमें विकास और प्रगति के अर्थ पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है।
हाँ, ये हमारी प्रजाति की शक्ति के बारे में विनम्रता और स्थायी मार के लिए जरूरी बदलावों के पैमाने के बारे में यथार्थवाद को बढ़ावा देती है।
तो इस गहन चर्चा से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या रहा या सबसे चौंकाने वाली बात?
मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी आधुनिक दुनिया जीवाश्म ईंधन पर आधारित बायोमास के बुलबुले पर बनी है और अंततः भौतिक वास्तविकता आर्थिक बातों पर भारी पड़ती है। हमें इन जैव भौतिक सीमाओं के भीतर काम करना सीखना होगा। ये किताब कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन एक साफ समझ देती है कि हम कहाँ खड़े हैं।
बिल्कुल। और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वह है हमारे प्रभाव का पैमाना, वो 40% तक स्थलीय NPP वाला आंकड़ा। ये दिखाता है कि हम अब सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि एक भूगर्भिक ताकत हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है इन सच्चाइयों को जानने के बाद भविष्य के लिए हमारे विकल्प क्या हैं।
हाँ, और हम उन्हें कैसे चुनेंगे, ये बड़ा सवाल है।
निश्चित रूप से एक जरूरी किताब जो सोचने पर मजबूर करती है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।